Om Shanti, good evening. Brahma Kumaris ke YouTube social media par aap sab viewers ka bahut bahut swagat hai. Aaj ka jo easy meditation session hai, isme humne jo topic liya hai wo hai being carefree. Bahut interesting topic hai. Aap sab befikar rehna chahte hain, chinta mukt rehna chahte hain. Isiliye aaj humne ye topic liya hai. इस टॉपिक से या इजी मेडिटेशन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आपके सजेशंस हैं, आपको कैसा लगता है, आपके अनुभव, आपके फीडबैक, आप लाइव चैट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और अभी भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो लाइव चैट में पोस्ट कर सकते हैं. जैसा आज का सेशन है बीइंग केयरफ्री. अब केयरफ्री शब्द को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए मैं आपको तीन शब्द बताना चाहूंगी. एक शब्द होता है वरी, है ना, वरी, ना, जिसको चिंता कहते हैं. और एक शब्द होता है केयरलेस, माना लापरवाह. तो ज्यादातर हम देखते हैं कि दुनिया में ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं, या बहुत वरी करते हैं, ओवर वरी करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उनके अंदर चिंता आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, ना? वो उनके एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है. और एक दूसरी तरह की पर्सनालिटीज होती हैं जिनको केयरलेस लापरवाह लोग कहते हैं, कि अर्थात उनको परवाह ही नहीं है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, कोई उनकी वेट कर रहा है, या कुछ भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें वो लापरवाह होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती है. अब ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही नुकसान कारक है. अगर हम वरी करते हैं तो वरी जो है हमारे अंदर स्ट्रेस, भय पैदा करती है और हमारी परफॉर्मेंस को पुअर करती है. और दूसरी तरफ अगर हम केयरलेस होते हैं, लापरवाह रहते हैं, तो उससे हमारे रिलेशंस भी खराब होते हैं और साथ ही साथ लाइफ में हमें वो सफलता नहीं मिलती जो हम सफलता पाना चाहते हैं. आध्यात्मिकता हमें एक तीसरा शब्द बताती है, वो बताती है केयर फ्री, अर्थात बेफिकर. बेफिकर क्या है, केयर फ्री क्या है, कि हमें केयर करनी है, हमें जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन तनाव मुक्त, फ्री माइंड से, मन में किसी भी प्रकार का बोझ खिंचाव के बिना. ये हमको केयर फ्री नेचर अपनी बनानी है, ये स्टेज हमें मेडिटेशन से अपनी डेवलप करनी है. ज्यादातर देखा गया है कि जो सीक्वेंस होती है वो ये होती है कि हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कई बार वेरी गुड प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते 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 हमारा एक थिन लाइन को क्रॉस करते हैं जिसको हम कहते हैं वरी, है ना. प्लानिंग जो है वो वरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वरी कई बार हम ओवर वरी करते हैं. अब उसमें पहले तो हमें ये फिल्टर करना है, अपने अंदर ये चेकिंग करके फिल्टर करना है कि हमारे अंदर कौन सी अननेसेसरी वरीज है, ना? अननेसेसरी वरीज, है ना. जैसे कि हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमको लगता है, जैसे एक भय, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. बच्चा बाहर जाता है तो हमेशा उसकी वरी करते रहते हैं, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए. ये इस प्रकार के कई अननेसेसरी वरीज हमारे लाइफ में रहती हैं, जो हमारे अंदर तनाव और भय हमेशा पैदा करती रहती हैं. सबसे पहले तो हमें उन अननेसेसरी वरीज को सॉर्ट आउट करके अलग करना है कि मुझे अननेसेसरी वरी नहीं करना है, वहां पर मुझे अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है. अब दूसरी, जिसको हम, मैं ये कह सकती हूँ कि वो नेसेसरी है, जैसे हमें बच्चों की चिंता होती है कि बच्चे पढ़ाई पढ़े, बच्चे पढ़ते नहीं है तो चिंता होती है कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो इनका कैरियर कैसे बनेगा. या कई बार बच्चों की ये भी चिंता होती है कि कहीं ये गलत संग में ना चले जाएं. इस तरह की भी हमारे अंदर, या अपने बिजनेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर के, या अपनी हेल्थ को लेकर के, अब इस प्रकार की कुछ नेसेसरी चीजें होती है लाइफ में जिसके ऊपर अटेंशन देना जरूरी है. अब वहां पर आप अटेंशन जरूर दीजिए, लेकिन अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी चिंता में चले जाएं, वरी में चले जाएं. हम कर्म करें, केयर करें, कंसर्न रखें, है ना। अगर आप उस वरी शब्द को कंसर्न शब्द ले लें तो बेटर होगा। कंसर्न करना जरूरी है, लेकिन वो कंसर्न वरी बिना बल जाए, पता नहीं क्या होगा, माना हमारे अपने अंदर हम भय पैदा कर लेते हैं। अगर आप अपनी चेकिंग करें, अपने आप से पूछें, आज तक जीवन में आपने जितनी वरीज करी कर्म से पहले, ज्यादातर हमको हम अपने कर्म से पहले ही वरी करते हैं, तो उसमें से प्रैक्टिकल कितनी हुई, ये आप चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल से एक तो अगर आपने जीवन में 1000 वरीज करी होंगी, रोज हम कुछ ना कुछ वरी करते हैं, तो उसमें से एक तो ऐसी होंगी जो उसमें कुछ प्रैक्टिकल हुई होंगी, बाकी 99% जो आपने वरीज की होंगी वो प्रैक्टिकल हुई नहीं होंगी ना? तो ये आपके पास अनुभव भी है कि वरी करने से कोई फायदा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जब हम वरी करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। इसलिए अपने थॉट्स को मैनेज करें, अपनी ड्यूटीज जरूर निभाएं, लेकिन कैसे, केयरफ्री। केयरफ्री अर्थात कि फ्री माइंड से, मन में कोई खिंचाव नहीं लाए ना, कि पता नहीं, जैसे बच्चा एग्जाम देता है, पता नहीं मैं, अगर वो यही क्वेश्चन एग्जाम देते देते सोचता रहे पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्या होगा, नहीं, मेरा फर्ज बनता है कर्म करना। और कर्म हमेशा जब हम फ्री माइंड से करते हैं, बिना तनाव के करते हैं, तभी उसमें हमें सफलता मिलती है। तो ये हमें अपने अंदर प्रैक्टिस में लाना है, जहां मेरे अंदर वरी का थॉट आए, जैसे ही आपको फील हो कि मेरा जो माइंड है वो तनाव की तरफ, वरी की तरफ जा रहा है, तो तुरंत उसको डाइवर्ट करें कि नहीं, मुझे अपनी तरफ से ड्यूटी निभानी है, अच्छा कर्म करना है जो मेरे हाथ में है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वर्तमान में जिए, रॉकिंग चेयर पे नहीं बैठे। रॉकिंग चेयर समझते हैं, कभी तो हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में, बीच में तो रुकते ही नहीं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं, रॉक करते रहते हैं, कभी पास्ट के रिग्रेट्स और कभी फ्यूचर की वरी, और उसमें क्या होता है वह आप सबको अनुभव है। इसलिए अपने आप को केयरफ्री बनाने के लिए, केयरलेस भी नहीं बनिए, वरी भी नहीं करिए, बीच में आइए, जो मैं कल आपसे बता रही थी कि स्पिरिचुअलिटी हमको बैलेंस करना सिखलाती है। तो अपनी स्पिरिचुअल, अपने आप को अंदर से इतना एम्पावर कीजिए ताकि आप अपने थॉट्स को मैनेज कर सकें, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। उसके लिए आपको इनर पावर्स की जरूरत है। जितना आप अंदर से मेडिटेशन के द्वारा पावरफुल बनते चले जाते हैं, जो पावरफुल है वही अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है, जो पावरफुल नहीं है तो उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर भी नहीं आती है। तो चलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि केयरफ्री स्टेज क्या होती है। अपने आप को केयरफ्री मोड में लेकर जाते हैं, ना केयरलेस ना वरी, एकदम केयरफ्री। तो सभी रिलैक्स हो जाएं, अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें। एकदम फ्री कर लें। अगर आपके हाथ में कोई सामान है, कुछ भी आपने होल्ड कर रखा है, वे सब कुछ छोड़कर अपने बॉडी को भी फ्री कर लें, रिलैक्स कर लें। अनुभव करें आपका बॉडी लाइट का बनता चला जा रहा है। वेटलेस, एकदम लाइट एंड फ्री। अपने आप को अपनी देह के बॉन्डेज से फ्री अनुभव करें। आपके थॉट्स जो खिंचाव वाले हैं, तनाव वाले हैं, उन विचारों से स्वयं को फ्री कर लें, मुक्त कर लें। और अपने आप को रिलैक्स, केयरफ्री अनुभव करें। मेरा मन, बुद्धि सब फ्री है, किसी भी प्रकार का मन में खींचातान नहीं। मेरे अंदर कोई भी युद्ध नहीं, कोई टग ऑफ वॉर नहीं। मैं इन सब से फ्री, स्वयं को केयरफ्री अनुभव कर रही हूं, बेफिकर, चिंता मुक्त अवस्था में चले जाएं। ये अवस्था आपको रिलैक्स करेगी, आप में शक्ति आएगी, मन बुद्धि हल्के हो जाएंगे। ये केयरफ्री स्टेज आपके सारे दिन की थकान को मिटा देगी, मन में जो चिंताएं हैं उन चिंताओं के कारण जो मन खिंचा खिंचा रहता, संबंधों में भी तनाव रहता, उन सब से आप अभी मुक्त हैं, केयरफ्री हैं। आई एम रिलैक्स, ऐसा अनुभव हो रहा कि जैसे बुद्धि से, मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, में आत्मा स्वतंत्र हूं, निश्चिंत हूं, ओम शांति। तो अभी हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने विचारों को, जो भी तनाव के विचार हैं, उन सब से हटाकर अपने अंदर अपने आप को रिलैक्स किया। आप सबका अनुभव होगा कि जब हम बहुत तनाव करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी आता है। हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, कईयों का पल्स रेट हाई हो जाता, कईयों का श्वास बहुत तेज चलने लग जाता, और हमने ये भी देखा है कि कईयों को जब बहुत ज्यादा हो जाता तो ब्लॉकेजेस भी, हार्ट ट्रबल बीमारियां हो जाती। अनेक बीमारियों का, तन की बीमारियों का कारण वरी है। तो इसलिए हमें इसको अपना दुश्मन समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन दुख देता है और तनाव हमें दुख देता है। इसलिए कर्म करते हुए, अब कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थितियां ही ऐसी हैं, या कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं हमको कि हम तनाव लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग हमें तनाव देते रहते हैं। अर्थात वो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं, या हमें समय पर सहयोग नहीं देते हैं, या धोखा देते हैं, या ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमको उनके भविष्य की चिंता होती है। इस कारण से हम क्या करें, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या करें। इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर यही देना चाहूंगी, क्या आपने कभी तनाव से अपनी समस्या का समाधान कर पाए हैं? क्या आपके तनाव करने से आपके बच्चों ने आपका कहना मानना शुरू कर दिया? क्या आपके तनाव करने से आपकी परिस्थितियां कम हुई या बढ़ी? इतना तो हम समझ सकते हैं। तो परिस्थितियां हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जब मेरे सामने परिस्थिति है तो उस परिस्थिति का मैं तनाव भी लूं। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में सदा अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल रखा है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है केयरफ्री रहने के लिए कि हम अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को, जो हमारे अंदर अपने से या दूसरों से जो पैदा होती हैं, उन सब के प्रति हम फ्लेक्सिबल रहें। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों से या अपने प्रियजनों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। आप एक्सपेक्ट कीजिए, अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ सकते हैं आप भले कीजिए, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 100% आपको मिलेगा। उसके लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए, उन कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। अब जैसे हम भी स्वयं से या अन्य आत्माओं से एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं होता है, सपोज मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं लाइफ में ये करूंगी, या अपने लाइफ के गोल्स हम रखते हैं, अब 100% अगर वो गोल अचीव फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, तो हमको उसमें तनाव नहीं लेना है, वहां पर हमको रियलिस्टिक बनना है, प्रैक्टिकल बनना है ना? कि जरूरी तो नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 100% मिल ही जाएगा, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 50% मिले सक्सेस, उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हो। ज्यादातर हमने देखा है कि जब हम संबंधों की बात करते हैं, संबंधों में एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमारे अंदर जो विजन होता है, हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो 100% की होती है, जिस कारण से जो सामने वाले में 5 या 10% चेंज आया भी है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन 100% की है, इसलिए हम उसके 10% को इतनी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम उसके 5 या 10% इम्प्रूवमेंट को अप्रिशिएट करें, तो मैं समझती हूँ सामने वाले में इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा और हमारे अंदर भी जो तनाव आता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह की अगर हम छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा अटेंशन रखें। अब कई बार क्या होता है, जैसे मेन हमने देखा है तनाव का कारण संबंध ही होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, आपने देखा होगा कई बार परिवार में या कई कपल्स ऐसे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमने देखा है अपनी लाइफ में वो ये होता है कि जो उनकी संतान है, जो बच्चा है, वो फिजिकली चैलेंज होता है। तो क्या होता है, उन पेरेंट्स को उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जो नॉर्मल बच्चे को इतना टाइम एनर्जी नहीं देनी पड़ती जितना उस बच्चे को देनी पड़ती है। लेकिन वो खुशी से उसको टाइम और एनर्जी देते हैं, उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। इस तरह के भी आपने केसेस देखे होंगे, लेकिन वहां पर हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, उस बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो दिख रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो ना कि फिजिकली चैलेंज्ड है, इसलिए उसको हमारी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे, हम उसके लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। उसी प्रकार से ये सटल है, कई बच्चे मन से डिफरेंट होते हैं, उनके थॉट्स डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर मैं समझती हूँ कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, मे बी कि वो ज्यादा स्टबन होते हैं या वो इतना उनके अंदर वैल्यूज उतनी नहीं होती हैं, जिस कारण से पेरेंट्स को उनके ऊपर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो सटल है तो वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो उनसे इरिटेट होते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, बाकी बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं, ये ऐसा क्यों करता है। उसका कारण यही है कि वहां पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस को नहीं समझ रहे हैं कि उसकी लिमिटेशन ये है कि उसकी हैबिट्स, वो भी अपनी हैबिट्स के कारण मजबूर है, जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो चाहता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चाहता है, लेकिन वो भी उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो अपनी हैबिट से मजबूर है जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जब हम उस चीज को नहीं समझ पाते तो हमारे अंदर उस परिस्थिति को लेकर तनाव पैदा होता है। इसलिए हमें हर एक की लिमिटेशंस को, उसकी कैपेसिटी को समझेंगे तो हम उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। हो सकता है ऐसे बच्चे को आपको ज्यादा अटेंशन देना पड़े, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अंदर तनाव पैदा कर ले कि ये ऐसा क्यों करता है। क्या आपके ऐसे सोचने से उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं। तो इसीलिए जीवन में हम जब इन बातों को आध्यात्मिक ज्ञान से, जो हमको यहाँ से मिलता है, अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाते हैं, तो जो मैच्योर है वो ये केयरफ्री रह सकता है ना, जिम्मेवारियां निभाते हुए, सब कुछ करते हुए। वो मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, मैं कई बार आप सबके साथ ये डिस्कस करती हूँ कि आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड डिफरेंट है, आपका इनर वर्ल्ड डिफरेंट है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में तनाव है, वरीज है, लेकिन वो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड को डिस्टर्ब ना कर, इनर वर्ल्ड हमारा स्टेबल रहे, उसमें हम केयर फ्री रहे। अगर कोई बात भी आ जाए, ऐसे भी कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो उसी तरह से जो होना है वो तो होना ही है। क्या आपके चिंता करने से ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं होगा? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एफर्ट है, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करूं। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाया तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए। मुझे अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है, और फ्लेक्सिबल जो है वो जो पावरफुल है वही फ्लेक्सिबल है। आप देखिए, क्या एक बैम्बू ट्री होता है कितना फ्लेक्सिबल होता है, और बैम्बू ट्री कितना स्ट्रांग होता है। बैम्बू वुड तो बहुत स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन वो कितना फ्लेक्सिबल होता है। जब तूफान आता है तो बैम्बू का ट्री एकदम जमीन को छू लेता है, लेकिन टूटता नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी हमारे में आती है, हम उतना केयर फ्री रह पाते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिजिड रहते हैं, तो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और वो तनाव हमें अंदर से तोड़ देता है ना। फिर कई बार लोगों की इट्स ईगो, हम कहते हैं ना, अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है। तो अगर हम अकड़ेंगे, ईगो रखेंगे, तो ईगो वाला कभी केयरफ्री नहीं रह सकता ना? उसके अंदर हमेशा चिंता उसको लगी रहेगी। उसकी चिंता का कारण ही उसकी सटल ईगो है, जो उसको चिंता में ला रही है। इमेज कॉन्शियस है बहुत ज्यादा, उसको इमेज का कॉन्शियस है, उसको ईगो है, जिस कारण से वो केयरफ्री नहीं रह पा रहा। इसलिए अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, सरलता लाएं। जो जितना सिंपल होता है, सरल होता है, उतना वो केयरफ्री रह सकता है ना? तो ये वैल्यूज जितनी हमारे में आएंगे ना, आप एक केयरफ्री लाइफ लीड कर पाएंगे। परिस्थितियां हैं, लेकिन परिस्थितियों के होते हुए भी अब आपको ये चीज प्रैक्टिकल करनी है, अपनी प्रैक्टिस में लानी है। चिंता वाली परिस्थिति में, चैलेंजिंग सिचुएशन में मुझे तनाव नहीं लेना है, यही ग्रेटनेस है। इसको प्रैक्टिकल में लाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। ये अपने ऊपर अटेंशन रखें, तो आपका लाइफ जो है एकदम केयरफ्री, स्वतंत्र जीवन आप जिए। कहते हैं कि छोटा सा जीवन है, छोटी छोटी बातें हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत छोटी बात होती है, उसमें भी इतना कई लोग तनाव ले लेते हैं, केयरफ्री नहीं रहे, आदत पड़ जाती है ना। वरी इज अ हैबिट, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। इसलिए अपने आप अपनी हैबिट चेंज कीजिए, अपने आप को केयरफ्री बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिर से मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप को रिलैक्स कर ले। अपने मन बाहर की सभी बातों से डिटैच कर प्रकृति के बीच मैं एक डिवाइन लाइट हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पीसफुल सोल। शांति, पवित्रता, शुद्धता, खुशी, धैर्यता अनेक गुणों की मेरे अंदर भरपूरता है। मैं आत्मा चैतन्य हूं, अजय अमर अविनाशी हूं। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए हार्ट बजाने के लिए मैं अतिरिक्त हूं। कर्म करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं एक्टर हूं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां निभाना मेरी ड्यूटी है। अपने संबंधों के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं, वे मुझे अवश्य निभानी है। परंतु जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी तनाव ना बन जाए, बोझ ना बन जाए, चिंता का रूप ना ले लो, ये मुझे अटेंशन रखना। सब कुछ करके अपने आप को फ्री भी रखना है, यही जीवन जीने की कला है। तनाव जैसी परिस्थिति में भी अपने आप को अंदर से खुश रखना, रिलैक्स रखना मुझे सीखना है। क्योंकि जितना मैं रिलैक्स रहूंगी उतना ही मेरा तनाव भी कम होगा और मैं परिस्थितियों को सहज पार कर लूंगी। इसलिए मुझे अपने ऊपर ये अटेंशन रखकर केयरफ्री रहने की हैबिट बनानी है। जैसे आज मैंने तनाव करने की एक हैबिट बना ली है, उसी तरह से अब मुझे तनाव मुक्त केयरफ्री रहने की हैबिट डेवलप करनी है। उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबल होना है, अपने अंदर धैर्यता रखनी है, अपने पर निश्चय रखना है, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स ही चलाने हैं। यही मुझे केयरफ्री बना सकेंगे। और सदा केयरफ्री रहने के लिए, बेफिकर रहने के लिए परमात्मा को अपना साथी बना के रखें। जहां परमात्मा का हाथ और साथ है वहां कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है, क्योंकि हमारी सर्व जिम्मेवारियां उसने अपने ऊपर ले ली और मैं निश्चिंत केयरफ्री हूं। अपने आप को इस फीलिंग में ले जाएं, आई एम केयरफ्री, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स। कोई खींचातान विचारों का नहीं, शांति। आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबने जो भी अनुभव किया, कैसा आपने फील किया वे जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मनीषा जी लिखती हैं, अब तो कोई लगा है कि आपने 2-3 क्वालिटीज बताओ तो इतना सोचना पड़ता है, लगता है मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दो, हम क्या अपना गुण और अवगुण पहचान नहीं पा रहे। मनीषा जी, आपके अंदर कई क्वालिटीज होंगी, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर विशेष कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। उन गुणों को देखिए, आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये ज्ञान जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो मिरर का काम करता है, क्योंकि उस मिरर में और मेडिटेशन अर्थात लाइट, उस लाइट में हमें अपने गुण स्पष्ट नजर आते हैं। तो आपके अंदर अनेक गुण होंगे जो आपको जरूर नजर में आएंगे ना? थोड़ा और मेडिटेशन में प्रसादत कीजिए। तो जैसे आज हम केयरफ्री की बात कर रहे थे, तो अभी आप सब क्या करेंगे ना? कि कल हम आपसे मिलेंगे, लेकिन कल तक आपको एक टारगेट रखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अंदर से केयरफ्री रहना है, ये टारगेट रखना है। कमल जी लिखती हैं, मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही होती, एग्जाम ड्यूरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, अब ऐसा ही आफ्टर मैरिज होता है, लाइफ में सब ठीक है बट बेटी के एग्जाम जब भी शुरू होने वाले होते हैं तो लाइफ में चारों ओर से प्रॉब्लम आने लगती है, फिर मेरी इस वरी को कैसे दूर करूं? देखिए, एग्जाम्स आना वरी नहीं है, एग्जाम्स तो हर एक को देने ही होते हैं, बाकी विघ्न आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स का काम है आना और हमारा क्या काम है उनको सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस का आंसर तो देना पड़ेगा, तो लाइफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें आप वरी नहीं कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप वरी लेस हो जाएंगे ना? तो मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन टच होते हैं और उसमें परमात्मा भी हमें बहुत मदद करते हैं। तो इसलिए वरी नहीं कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अगर आप कर्म से पहले ही वरी मना नेगेटिव सोचना और अपने अंदर अननेसेसरी भय पैदा करते रहना, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि भय कितना नुकसानकारक होता है। इसलिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर प्रॉब्लम आई भी है तो अपने आप को खुद आंसर दीजिए कि ठीक है, जो आई है वो चली भी जाएगी ना, कि मुझे उसमें डिस्टर्ब या हैवी, और दूसरों को भी हल्का कीजिए। ताकि वो वायुमंडल जो तनाव वाला बन जाता है, एक प्रॉब्लम अगर आप सारा दिन वो प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहेंगे तो क्या होगा, तो वो वायुमंडल में तनाव आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उससे हटे। ज्योति जी लिखती हैं कि कभी कभी कुछ लोगों की स्मृति से ही एक घिन भावना आती है, लगता है कोई कैसे अपने बच्चों को रुला के खुश हो सकता है। देखिए कई बार हम दूसरों के व्यवहार को, या जैसे आप लिख रहे हैं कि कोई अपने बच्चों को रुला के खुश कैसे हो सकता है, कई बार हमको दूसरों का व्यवहार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति ये कैसे कर सकता है, क्योंकि हम उसको अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, है ना। लेकिन वो किन सर्कमस्टेंसेस में है, वो ये ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हर एक की अपनी हैबिट्स है, कई बार वो चाहते नहीं है लेकिन हैबिट्स उनसे वो काम करा देती हैं। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, है ना। तो इसलिए किसी को भी समझने से पहले उसको डिटेल में, और हम कितना जानते हैं किसी को, ये भी हमें देखना है। रूपिका जी लिखती है, मैं थोड़े दिनों से बीमार हूँ, मैंने 7 डे कोर्स नहीं किया है, लेकिन बाबा का परिचय है, बाबा कैसे मदद करता है। मैं कहती हूँ तुम पेरेंट हो मेरे, मेरे लिए केयर करते हो ही बाबा, ठीक है ना। देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 7 डेज का कोर्स कीजिए, बाकी बाबा परमात्मा जो है वो सबको मदद करता है, लेकिन उसका एक नियम है कि जहाँ हिम्मत है वहां मदद है। वो कहता है तुम हिम्मत रखो तो मैं मदद करूंगा। तो सबसे पहले आपको अंदर, अपने अंदर हिम्मत डेवलप करनी है, तो आपको परमात्मा की मदद अवश्य मिलेगी। ये स्पिरिचुअल लॉ है, ठीक है रूपिका जी। तो आप हिम्मत रखिए। गीता जी लिखती है, आई यूज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड काम, नाउडेज ऑन स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन माय siblings, I try to sit for meditation but get very quickly give up because of my circumstances. What to do? देखिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ज्यादातर हमारे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही होती है वहां पर मन आकर्षित होता है, वहां के थॉट्स बार बार आते हैं। इससे आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। भल आपको फेलियर मिले, फर्स्ट टाइम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप बैठे रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। आप गिव अप नहीं कीजिए, गिव अप करने से तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इससे एक बार फेलियर हो दोबारा, जैसे बच्चा गिर जाता है तो आप छोटे बच्चे को तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं खड़ा हो जा दोबारा चल, ना उसको दोबारा चलाते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि तुम जिंदगी भर चल ही नहीं पाएगा। तो मनुष्य गिर गिर कर ही कहते हैं चलना सीखता है। उसी तरह से मेडिटेशन एक न्यू चीज है हमारे लिए, अभी तक हमें थॉट्स को मैनेज करना किसी ने नहीं सिखलाया, तो शुरू शुरू में ऐसी बातें आती हैं, बट हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारा ये प्रोग्राम देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रूबी लिखती है, आई फेल्ट नाइस रिपीटेड योर वर्ड्स अबाउट रियलाइजिंग दैट परमात्मा इज केयरिंग एंड हेल्प्स अस टू हैंडल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। My elder parents worry a lot and I will repeat your words to them today. Thank you so much. बिल्कुल, है ना, कि हमें ये निश्चय रखना है कि वो मेरे साथ है और उसने मेरी जिम्मेवारियां उठाई हैं। अपने आप को रिलैक्स रखिए, जब वो सारी दुनिया चला रहा है तो हमारे को भी मदद करता है। राकेश जी लिखते हैं, कुछ टाइम के लिए केयर फ्री फील किया, कोशिश करूंगा कि ये फीलिंग केयर फ्री की लॉन्ग टाइम के लिए रहे। जी राकेश जी, इसको बढ़ाते जाइए, ड्यूटीज निभाइए, जिम्मेवारियां निभाइए, लेकिन केयर फ्री होकर, रिलैक्स होकर, अपने अंदर तनाव नहीं लाइए। फिर देखिए आपको जीवन कितना अच्छा लगेगा और आप कहेंगे कि हाँ प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। उनको अपने अंदर कैरी नहीं कीजिए, उनसे फ्री रहिए। नहीं तो हम सोते उठते खाते पीते, कोई भी जीवन में छोटी सी बात आ जाती है तो उसको हम कैरी करके चलते हैं, तो उसका बोझ उतार कर केयर फ्री होकर के रहिए। तो आज हम सबने एक्सपीरियंस किया और आप सबने अपने शेयर भी किया कि कैसे हम केयर फ्री रह सकते हैं। तो ये कला अपने अंदर डेवलप कीजिए, जीवन बहुत सुंदर है, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, अगर हमने वो जीवन तनाव में ही बिता दिया तो क्या रहेगा। इसलिए इस जीवन को खुशी खुशी, खुशी सबसे बड़ा खजाना है, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। बातों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अपने आप को केयरफ्री और हैप्पी रखिए। यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हमारी कि आप सदा खुश रहें, केयरफ्री रहें। कल आपसे शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।